अचानक एक दिन खुद को जो हमने गौर से देखा, उसी दिन से कोई अपने सिवा अच्छा नहीं लगता।
क्या बात है।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जगत चंदौली।
और मैं प्रेमा नेगी। वैसे जगत, आज ये कार्यक्रम शुरू करते के साथ ही शायरी किस लिए?
ना 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 प्रेमा, ये शायरी नहीं, सच्चाई है। और वैसे भी सिर्फ मुझे ही क्यों, हम सबको खुद से प्यार करना चाहिए, फिर चाहे बात हमारी हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य की ही क्यों ना हो।
वो तो है।
बस यही सोचकर आज मैं अपने सभी श्रोताओं से कहना चाहता हूँ कि वो भी खुद से प्यार करें और अपने शरीर का, अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें।
बिल्कुल सही कहा तुमने।
दोस्तों, यहाँ पर शरीर का ख्याल रखने से मेरा इशारा शरीर का पूरी तरह से ख्याल रखने से है, यानी कि अपने यौन अंगों तक का ध्यान रखना।
ये बात तो तुमने खूब कही जगत। कई बार लोग यौन संक्रमण के शिकार हो जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता, और जब तक उनका उस तरफ ध्यान जाता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है।
तो दोस्तों, यौन संक्रमण का पता आपको कैसे चल सकता है, यही आज हम आपको बताने वाले हैं हमारे सेगमेंट जानो अनजाने में।
दोस्तों, STI यानी कि यौन संक्रमित रोग के लक्षण हमारे यौन अंगों के आसपास नजर आते हैं, जैसे महिलाओं में योनि से मवाद का बहना या सफेद पानी आना, या फिर पेशाब के दौरान जलन होना और योनि में खुजली होना। बहुत बार ऐसा भी होता है कि महिलाओं में STI का कोई भी लक्षण नजर नहीं आता।
दोस्तों, पुरुषों में पेशाब के दौरान जलन का होना या फिर लिंग के आसपास छालों या फिर पस का होना।
अगर आपके साथ कुछ ऐसा है तो दोस्तों, लापरवाही जरा भी मत कीजिए, क्योंकि ये सभी STI की निशानियां हैं और आपको तुरंत इसका पूरा और पक्का इलाज करवाना चाहिए।
जी हाँ दोस्तों, वैसे इसके अलावा कुछ और लक्षण भी हैं जो कभी कभी दिखाई देते हैं, जैसे कि हल्का बुखार रहना,
कमर के निचले हिस्से में दर्द रहना,
संभोग के दौरान लिंग में दर्द होना,
इसके अलावा महिलाओं में मासिक धर्म चक्र का बिगड़ जाना।
तो दोस्तों, अगर इनमें से भी कोई लक्षण आपको है तो लापरवाही बिल्कुल न बरतें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि अपने स्वास्थ्य से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए।
जी हाँ, अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है।
और दोस्तों, अगर आप STI या फिर HIV के संबंध में हमसे कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
आप हमें खत भी लिख सकते हैं। खत लिखने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम नई दिशा, 177 बेसमेंट अशोका इंक्लेव 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद 121003, हरियाणा।
और इसके अलावा आप हमें ईमेल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है नई दिशा NAYEDISHAA@gmail.com।
पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है,
और दोस्तों, अब आ गया है वो समय जब हम करते हैं आप सबका भेजा फ्राई।
वैसे दोस्तों, भेजा फ्राई तो है बहाना, मकसद है आप तक जानकारियाँ पहुँचाना और आपको इनाम जिताना। तो फिर किया जाए
क्या,
भेजा फ्राई।
दोस्तों, पिछले हफ्ते का हमारा सवाल था, HIV का वायरस शरीर की कौन सी प्रतिरोधक कोशिकाओं को नष्ट करता है,
और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि CD4 सेल्स।
और एपिसोड 35 का सही जवाब देने के बाद हमारी आज की भेजा फ्राई कैप के विजेता बने हैं सुमित जी गुरदासपुर से। आपको इनाम बहुत बहुत मुबारक हो।
और दोस्तों, अब हमारा आज का सवाल।
और आज का सवाल है, अगर कोई HIV से संक्रमित होता है तो आम तौर पर कितने दिनों के बाद संक्रमण के लक्षण दिखाई देने शुरू होते हैं? अपना सवाल फिर से सुनिए। अगर कोई HIV से संक्रमित होता है तो आम तौर पर कितने दिनों में संक्रमण के लक्षण दिखाई देने शुरू होते हैं? और आपके ऑप्शन हैं ए कुछ ही हफ्तों के भीतर, बी एक साल के भीतर, सी 5 से 7 साल में और डी 10 या उससे अधिक सालों में। अपने ऑप्शन एक बार फिर से सुनिए। ए कुछ ही हफ्तों के भीतर, बी एक साल के भीतर, सी 5 से 7 साल में और डी 10 या उससे अधिक सालों में।
दोस्तों, ये है वो सवाल जो आपको बना सकता है हमारी भेजा फ्राई कैप का विजेता। तो फिर आप सोच क्या रहे हैं? फटाफट अपना मोबाइल फोन उठाइए, टाइप कीजिए ND39 भेजा फ्राई स्पेस और अपना जवाब ए बी सी या डी और लिखकर भेज दीजिए 9717678223 पर।
और अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट आमने सामने का।
दोस्तों, आमने सामने में आज हमारे साथ हैं हमारे मेहमान जो आज हमसे एसटीआई पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं इनका परिचय।
मैं डॉक्टर राजेश पार्थ सारथी, कालकाजी नई दिल्ली में एक मेडिकल सेंटर चलाता हूँ, वहाँ पे मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ।
आपसे हमारा पहला सवाल है कि मुख्य तौर पे एसटीआई कितने प्रकार के होते हैं?
एसटीआई जिन्हें हम यौन रोग संक्रमण के रूप में जानते हैं, ये 5 तरह के होते हैं, जिसमें सिफिलिस, गोनोरिया, शैंक्रॉइड, लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरम और ग्रैनुलोमा इंग्वाइनेल हैं। लेकिन इनके अलावा भी हेपेटाइटिस बी, साइटोमेगालोवायरस, जेनाइटल हर्पिस, ट्राइकोमोनस, कैंडिडियसिस, ये इस तरह के यौन रोग संक्रमण हैं जो इसके अंदर ही आते हैं।
और ये आमतौर पर कैसे फैलते हैं?
यौन रोग संक्रमण ज्यादातर स्त्री पुरुष यौन रोग संबंध द्वारा ही फैलते हैं, लेकिन इनके अलावा समलिंगी संबंध या कुछ मुख या गुदे द्वारा जो संबंध होता है उसमें भी ये चीजें फैल सकती हैं।
डॉक्टर साहब, आज के हमारे कार्यक्रम में हमने श्रोताओं को बताया कि ज्यादातर एसटीआई दवाइयों से पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, तो एसटीआई के इलाज के बारे में क्या आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे?
यौन रोग संक्रमण जिनका नाम मैंने अभी बताया आपको, इसमें कुछ लक्षण खास होते हैं, जैसे जननांगों के ऊपर कोई घाव हो सकता है या जननांगों से कोई तरल पदार्थ निकल सकता है, कुछ गिल्टियां कॉमन हो सकती हैं। इनके ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि किस तरह की ये बीमारी हो सकती है और उसका क्या इलाज हो सकता है। 2 गोली में भी ये चीज़ें ठीक हो सकती है, 1 इंजेक्शन में भी ठीक हो सकता है या 10 से 12 दिन का कोर्स होता है जिसमें कि ये बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। अगर मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं तो जहां जननांगों द्वारा तरल पदार्थ निकलता है वहां पे हम सिर्फ 2 गोली द्वारा इसका इलाज करते हैं और ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। सिफिलिस की अगर मैं बात करूं तो 1 पेनिसिलिन का इंजेक्शन होता है जिसमें कि ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कुछ बीमारियों में हमें कुछ और दवाइयाँ सुबह शाम 10 से 12 दिन देनी होती हैं जिसमें पूरा इलाज हो जाता है।
अच्छा, हमें ये बताइए कि अगर किसी को यौन रोग है तो तुरंत क्या सावधानी बरतनी जरूरी है?
ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि यौन रोगों में लक्षण बहुत मायने कई बार नहीं रखते हैं। कोई अगर घाव जननांगों के ऊपर हो गया है तो वो समझ नहीं पाता है कि ये किसी खास बीमारी की वजह से है और अपने आप नहीं हुआ है। तो हमें ये लोगों को अवेयरनेस लानी चाहिए उनमें कि थोड़े भी लक्षण अगर नज़र आएँ तो वो तुरंत इस चीज़ के लिए डॉक्टर से संपर्क करें या जो एसटीआई काउंसलर्स वगैरह होते हैं एसटीआई क्लिनिक में उनसे बात करें इससे रिलेटेड, और इनको नज़रअंदाज नहीं किया जाए। कुछ खास केसों में जैसे कि प्रेग्नेंट फीमेल्स में कुछ बीमारियां ऐसी हो सकती हैं जो अंदर अंदर मौजूद हैं लेकिन उनको कोई लक्षण नहीं है, लेकिन ये आमतौर पे अगर बीमारी है तो वो बच्चे में भी नुकसान कर रही है और उन वीमेन्स के जो पार्टनर्स हैं उनमें भी ये धीरे धीरे संक्रमण बढ़ता जा रहा है। तो इन वजह से हमें इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और पहले लक्षण नज़र आने पर ही इनका इलाज जो है उसके लिए लोगों को आगे आना चाहिए।
डॉक्टर साहब, एसटीआई और एचआईवी संक्रमण के बीच क्या संबंध है?
यौन रोग संक्रमण और एचआईवी एड्स दोनों के संक्रमण के तरीके एक जैसे होते हैं, दोनों यौन संबंधों द्वारा ही संक्रमित होते हैं। दोनों के रोकथाम के लिए भी हम कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं जिनसे संक्रमण को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। जहाँ पे एसटीआई हो उन लोगों में एचआईवी एड्स होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि एसटीआई के अंदर जो घाव होता है या जो तरल पदार्थ निकल रहे होते हैं उनसे एचआईवी सीड होने के, फैसिलेट होने के संभावना 2 से 10 गुना ज़्यादा होती है। लेकिन एसटीआई बदल के आगे बढ़ के एड्स हो जाता है, ये गलत है, तो ऐसा लोगों को गलत भ्रम नहीं पालना चाहिए।
तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के मेहमान। जो बता रहे थे एसटीआई के बारे में। उम्मीद है आपको इनकी बात समझ आई होगी। तो आज से एसटीआई के प्रति कोई लापरवाही नहीं।
और दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी चिट्ठियों की। दोस्तों, आपकी बात में आज हम शामिल कर रहे हैं विपिन नागर जी की मेल को, जिसमें इन्होंने पूछा है कि जिस लड़की से मैं शादी कर रहा हूँ उसने पहले किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए, पर शादी के बाद हमारे बीच में शारीरिक संबंध होंगे तो उसमें एचआईवी संक्रमण के कितने चांसेस हैं? विपिन जी, अगर आपने और आपकी होने वाली पत्नी ने पहले कोई असुरक्षित शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं तो आप दोनों को एचआईवी का खतरा कम है, क्योंकि ज्यादातर संक्रमण मल्टीपल सेक्स पार्टनर या असुरक्षित यौन संबंध से होता है। मगर एचआईवी संक्रमण के और भी कारण होते हैं, जैसे संक्रमित खून के जरिए और संक्रमित सुइयों से। इसलिए आप दोनों को आपस में एक बार इन सब बातों के बारे में खुली चर्चा कर लेनी चाहिए, और फिर आगे अपने शादीशुदा जीवन में यदि आप एक दूसरे के प्रति पूरी वफादारी निभाएंगे तो एचआईवी संक्रमण से बचे रहेंगे।
वैसे जगत, विपिन जी से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर शादी के बाद वो कॉन्डोम का इस्तेमाल करेंगे तो दोहरी सुरक्षा रहेगी, यौन रोग और एचआईवी से और अनचाहे गर्भ से भी। तो विपिन जी अपनी होने वाली पत्नी से इस बारे में खुलकर चर्चा करें और कॉन्डोम का इस्तेमाल करें।
कमाल है प्रेमा, अभी अभी जो तुमने बात की, एक ऐसा ही सवाल विपिन जी ने और भी पूछा है। वो ये पूछते हैं कि अगर विदाउट कॉन्डोम के यौन संबंध बनते हैं तो एचआईवी संक्रमण के कितने चांसेस हैं? तो विपिन जी, हम आपको बताते हैं कि अगर एक पार्टनर को एचआईवी संक्रमण है और उसके साथ अगर आप कंडोम के बिना सेक्स कर रहे हैं तो एचआईवी संक्रमण होने का पूरा पूरा चांस है। और चूंकि किसी को देखने भर से हम उसके एचआईवी स्टेटस का पता नहीं लगा सकते, तो हर वो सेक्स जो कंडोम के बिना होता है असुरक्षित है, और उस दौरान एचआईवी संक्रमण का पूरा पूरा खतरा है। तो किसी के साथ यौन संबंध बनाते समय कंडोम का प्रयोग करना ही चाहिए। दोस्तों, अगर आपके मन में भी एचआईवी के संबंध में कोई भी सवाल है तो आप हमें अपना सवाल खतों या फिर ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान कर सकें।
चिट्ठी भेजने के लिए आप हमारा पता भी नोट कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम नई दिशा, 177 बेसमेंट, अशोका इंक्लेव 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद 121003, हरियाणा।
और हमारा ईमेल आईडी है naydishaneydishaa@gmail.com।
जगत, अब जानकारियाँ तो हम काफी दे चुके हैं, क्यों ना थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए?
बिल्कुल प्रेमा। तो दोस्तों, आपके मनोरंजन का ख्याल रखते हुए आइए सुनते हैं इस धारावाहिक की 39वीं कड़ी। दोस्तों, पिछले हफ्ते के एपिसोड में आपने सुना, शीला गधेरे पर पानी भरते हुए फिसल कर गिर जाती है और उसकी हालत बिगड़ जाती है। मौके पर कटोरी और धर्मंती वहां पहुंच जाती हैं और उसे घर ले आती हैं। शीला के बिगड़ती हालत देखकर राजन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है।
उधर सूरज के घर पर सूरज और उसकी माँ के बीच रबिता की शादी को लेकर बहस छिड़ जाती है। सूरज अपनी माँ से रबिता की शादी के लिए साफ मना कर देता है। आइए अब सुनते हैं आगे की कहानी।
पिताजी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है।
नहीं सुमन बेटा, ऐसा नहीं सोचते।
नहीं पिताजी, अगर पानी लेने मैं चली जाती तो ये सब कुछ नहीं होता, और ना ही फिर आप इतने परेशान होते। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी।
नहीं बेटा नहीं, देखो जिंदगी में किसी से भी गलतियां होना बहुत आम बात है, बड़ी बात तो तब है जब हम उन गलतियों से सबक लें। बेटा तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें एक बार अपनी माँ खो देने के बाद फिर से माँ मिल गई। समझ रही हो ना बेटा मैं क्या कह रहा हूँ?
जी पिताजी मैं समझ रही हूँ।
राजन जी।
डॉक्टर अब कैसी है शीला?
राजन जी हादसा तो बहुत बड़ा था लेकिन टल गया। अब माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं।
सच डॉक्टर? डॉक्टर समझ में नहीं आता कि मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं। धन्यवाद डॉक्टर।
धन्यवाद मेरा नहीं भगवान का कीजिए। हम डॉक्टर्स तो केवल कोशिश करते हैं। और राजन जी आप चाहें तो शाम तक इन्हें घर भी ले जा सकते हैं।
मैं घर ले जा सकता हूँ शीला को? थैंक यू डॉक्टर।
ये लो भैया ये तुम्हारी 1 किलो चीनी ये लो और दाल 1/2 किलो दाल ना ये लो 1/2 किलो दाल।
जयपाल।
अरे सूरज ये सुबह सुबह कहाँ की तैयारी भाई?
बस यार चलते हैं अपने सफर पर।
मतलब मुंबई?
हाँ।
अच्छा सुन सूरज यार वो मेरी दवाइयाँ खत्म हो रही हैं हो सके तो।
अरे यार तू फिक्र मत कर मैं जाते ही सबसे पहले तेरी दवाइयाँ लेकर तुझे भेज दूंगा।
ठीक है ठीक है।
अच्छा जयपाल चलता हूँ वरना गाड़ी छूट जाएगी।
अरे चलना मैं छोड़ कर आता हूँ।
अरे नहीं नहीं यार मैं चला जाऊंगा तू यहाँ अपनी दुकान संभाल।
अच्छा ठीक है।
इधर से तो सारे घर हो गए सुरेंद्र बस जयपाल चाचा का घर रह गया है।
एक काम क्यों नहीं करते मोहित उन्हें उनकी दुकान पर चलकर ही बोल देते हैं।
भैजी थोड़ी पीली दाल तोल दो।
अच्छा अभी तोलता हूँ।
और भैजी थोड़ी लाल मिर्ची भी।
अच्छा अच्छा देता हूँ अभी लाता हूँ।
अरे कटोरी मिर्ची थोड़ी कम खाया कर तो वैसे ही बहुत तीखी है।
नहीं नहीं प्रधान जी आपको गलत फहमी हुई है ये लाल मिर्ची तो मैं नजर उतारने के लिए ले जा रही हूँ। वो क्या है ना आजकल गांव में लोग बुरी नजर लेकर बहुत घूमते हैं ना।
प्रधान जी नमस्ते। कटोरी ये ले तेरी लाल मिर्च
लाइए।
अरे प्रधान जी भी यही है। प्रधान जी नमस्ते।
नमस्ते नमस्ते। कहो मोहित बेटा क्या हो रहा है? और ये कागज कैसे हैं तुम्हारे पास? अगर तुम इस जयपाल की दुकान पर कोई चंदा वंदा मांगने आए हो ना तो भूल जाओ।
अरे नहीं नहीं प्रधान जी हम लोग कोई चंदा वंदा नहीं मांग रहे हैं बल्कि हम तो उन लोगों के नामों की सूची बना रहे हैं जो इस बार गांव में लगने वाले रक्तदान शिविर में अपना रक्तदान करेंगे।
रक्तदान?
आपका नाम लिख लो प्रधान जी।
मेरा
हाँ हाँ इनका नाम तो जरूर लिखो मोहित आखिर ये तो गाँव के प्रधान है इनको तो रक्तदान जरूर करना चाहिए क्यों प्रधान जी?
हाँ हाँ लिख लो लिखो 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 बेटा।
और मेरा नाम भी लिखो मोहित मैं तो रक्तदान जरूर करूंगी।
तो ये लो लिख लिया तुम्हारा नाम कटोरी। जयपाल चाचा आप रक्तदान नहीं करेंगे?
नहीं नहीं बेटा मैं रक्तदान नहीं करूंगा बेटा। देखो वो क्या है ना बेटा आजकल मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं रहती है और शरीर भी बहुत कमजोर है अब इसलिए तुम मेरा नाम तो रहने ही दो बेटा।
अरे ऐसे कैसे रहने दे जयपाल तुझे भी रक्तदान करना होगा तुम इनका नाम लिखो।
अरे नहीं 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 प्रधान जी नहीं देखिए आप मेरा नाम रहने दीजिए प्रधान जी।
अरे
जब जयपाल भैजी मना कर रहे हैं तो इनका नाम रहने दो। और वैसे भी मैंने सुना है रक्तदान अपनी इच्छा से किया जाता है जो चाहे करे और जो ना चाहे वो ना करे।
तुम सही कह रही हो कटोरी और वैसे भी जब जयपाल चाचा कह रहे हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उनका नाम नहीं लिखता। अच्छा प्रधान जी हम चलते हैं अभी बाकी घरों में भी जाना है।
जय राम जी की।
लक्ष्मी लक्ष्मी
आती हूँ। अरे आ गए आप।
लक्ष्मी ये कुछ राशन का सामान है इसे रसोई में जाकर रख दो।
जी अभी रख देती हूँ और आपके लिए खाना भी लगा देती हूँ।
ठीक है।
ये दाल चीनी और ये चावल।
अरे रे बारी ये क्या कर रही है?
कुछ नहीं माँ जी ये कुछ राशन का सामान लाए थे बस वही निकाल कर रख रही हूँ।
अरे बारी इस सामान को रसोई से अलग कर दे।
आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी?
हाँ बारी मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। हम खाने में इस राशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
लेकिन माँ जी, फिर हम खाएंगे क्या?
लेकिन अगर खा भी लिया तो क्या? इससे बेहतर है कि भूखे मर जाएं। अरे कम से कम इस बीमारी से मरने से तो अच्छा ही है ना?
माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? भला इस राशन को खाने से हम बीमार कैसे हो सकते हैं?
अरे ये राशन जयपाल लाया है और उसने इस राशन को हाथ लगाया है।
ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, वो जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं तो सिर्फ हमारे लिए। वो आज यहाँ घर पर हैं तो सिर्फ हमारे लिए, और वो काम कर रहे हैं तो वो भी सिर्फ हमारे लिए माँ जी। लेकिन मुझे दुख है माँ जी, ज्यादा दिन तक वो ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे।
कहना क्या चाहती है तू?
माँ जी, वो आज जो जिंदगी जी रहे हैं वो उनकी दवाइयों की बदौलत है। लेकिन ये दवाइयाँ भी तभी असर करती हैं जब इंसान खुश रहे, उसे किसी तरह का तनाव ना हो। और माँ जी, आपके इस व्यवहार की वजह से उन पर दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा। और मुझे तो डर है माँ जी कि एक दिन पिताजी की तरह आप अपने बेटे को भी खो देंगी।
क्या?
हाँ माँ जी, मैं तो उनकी पत्नी हूँ, हमेशा उनका साथ दूंगी, फिर चाहे कोई उनका साथ दे या ना दे।
लक्ष्मी, तू ठीक कहती है। तुझे हमेशा याद रहा कि तू उसकी पत्नी है और तूने हमेशा ही उसकी पत्नी होने का फर्ज निभाया है। शायद मैं ही भूल गई थी कि मैं उसकी माँ हूँ।
ऐसा मत कहिए माँ जी,
तू तो हमेशा उसके साथ रहती है ना। जब तुझे ही कुछ नहीं हुआ तो किसी और को? मुझे पता नहीं कि मैं गलत थी या सही थी, लेकिन इतना जानती हूँ कि मैं एक बार फिर से जयपाल की माँ बनने की कोशिश जरूर करूंगी बेटी, मैं कोशिश जरूर करूंगी, जरूर कोशिश करूंगी।
अच्छा प्रेमा, आज हम अपने कार्यक्रम में अपने श्रोताओं से एसटीआई के मुद्दे पर बात कर रहे थे ना?
बिल्कुल।
तो क्यों ना अब हम अपने श्रोताओं से ये जाने कि अगर उनके परिवार का कोई सदस्य एसटीआई से पीड़ित है तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए।
हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो आइए दोस्तों, क्या कहते हैं हमारे श्रोता इस बारे में हमारे सेगमेंट क्या किया जाए में।
हम उसे डॉक्टर के पास जाने की सलाह देंगे कि यह रोग झाड़ फूंक से नहीं बल्कि सही इलाज से ठीक होता है, आप डॉक्टर के पास जाएं।
ऐसे में हम यही करेंगे भाई, झाड़ फूंक वाले के पास न जाया जाए और किसी डॉक्टर का परामर्श लिया जाए।
सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर को सलाह से अपने इलाज करवाएंगे। मेरी दृष्टि से झाड़ फूंक वाले के पास न जाएं।
पहले ये राय देना चाहता हूँ कि डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, पर वैसे हमारे घरों में बुजुर्ग लोग कहते हैं जैसे पर्दर या जैसे हरी घास या किसी चीज के उससे भी ठीक हो जाता है, पर ये तो हकीकत ऐसी चीजों से नहीं होता होगा, क्यों डॉक्टर तो आखिर डॉक्टर है, पहले के बना रखे हैं तो इसलिए हो जाता है, किसी का ठीक भी हो जाता है किसी का ज्यादा हो जाता हो।
तो दोस्तों, ये थी हमारे श्रोताओं की राय, और जहाँ तक हमारी राय है, हम भी यही कहना चाहेंगे कि एसटीआई का इलाज किसी झाड़ फूंक वाले के पास नहीं है बल्कि इसका इलाज डॉक्टरों के पास है।
मकड़ी के जाले हैं, अंधेरे पाले हैं, चंद लोगों ने जागो जागो जागते रहो।
अगर ऐसे में आप में से कोई भी एसटीआई से पीड़ित है तो उसके सही और पक्के इलाज के लिए डॉक्टर से ही संपर्क करें।
और दोस्तों, जैसा कि अब घड़ी कर रही है इशारा, यानी कि समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे
अपने सामूहिक संवाददाताओं को जिन्होंने हमारे श्रोताओं के विचारों को जानने का प्रयास किया।
साथ ही हम धन्यवाद करते हैं सामुदायिक रेडियो हेवलवानी और मंदाकिनी की आवाज को जो इस कार्यक्रम को पहाड़ों में बसे हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
और इसके अलावा हम आभारी हैं अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन का भी, जिनके वित्तीय सहयोग से आइडियो सिंक मीडिया कंबाइन द्वारा ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। और दोस्तों, अब मुझे और प्रेमा को दीजिए इजाजत, हमारी और आपकी अगले हफ्ते इस समय फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।